ओम शांति। अभी का हमारा विषय है यज्ञ स्नेह। शायद कोई ऐसे भी होंगे, बाबा इसको यज्ञ भी कहते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी परिवार है उसी प्रकार ये एक यज्ञ है, बड़ा बेहद का यज्ञ। बाबा कई बार कहते हैं कि बड़े सेठ ने इस यज्ञ को रचा है और उस यज्ञ के रक्षक कौन है, हम ब्राह्मण। और बाबा ये भी शब्द यूज करते हैं कि बच्चे यज्ञ स्नेही बनो। तो आज का विषय यही है यज्ञ स्नेही, जिसको स्पष्ट करेंगे हमारे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी। राजू भाई, जैसे यहाँ की विशेषता है कि बहुत सारे समर्पित भाई या बहने बचपन से ही बाबा के ज्ञान के प्रति जागरूक हो गए और ज्ञान समझ में आया और जीवन उन्होंने समर्पित किया, सब कुछ सेवा में लगा दिया। उनमें से ही एक है हमारे राजू भाई। यूं तो आप में बहुत सी विशेषताएं हैं, हमारा जो रूरल सर्विसेज विंग है, ग्राम सेवा विभाग, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता जो आज आपको बहुत सहज रूप में मुरली याद हो जाती है, धारणा की पॉइंट्स, बाबा का वरदान, क्वेश्चन आंसर के रूप में, मुरली के सार के रूप में, तो ये कहेंगे कि ये विशेषता आपकी ही है। आज लाखों भाई बहन बाबा की मुरली को इसी रूप में सुनकर या पढ़कर उसको याद कर लेते हैं। और बाबा की मुरलियों से अच्छे अच्छे वरदान निकालना और मुरलियों में भेजना, और न केवल इतना, जब भी फेस्टिवल्स कोई भी आते हैं या विशेष दिन होते हैं, जैसे मान लीजिए बाबा का स्मृति दिवस है या मम्मा दिवस है या कोई ऐसे त्योहार है, हमारे पास पहले से ही उस प्रकार के पॉइंट्स पहुंच जाते हैं। ये सब सेवा आप ही करते हैं। आप देखिए, मुरली बाबा की यहाँ चलती है और रात को सेंटरों पे लगभग 2 बजे मुरली जो है हमारे पास पहुंच जाती है, जब बाबा की सीजन की मुरली चलती है। बाबा मुरली चला रहे होते हैं और साइमल्टेनियसली आप मुरली जो है कंप्यूटर में टाइप करते रहते हैं। तो ये भी बाबा ने एक एक बच्चे में ऐसी विशेषता भरी और ऐसा उनको विशेष आत्मा बना दिया, जिन विशेष आत्माओं से आज अनेक आत्माएं प्रेरणाएं ले रही हैं। आप भी समय प्रति समय भारत में और बाहर भर्तियां कराने जाते रहते हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय राजू भाई जी को निवेदन करती हूँ कि आज का विषय स्पष्ट करें। उससे पहले हम एक हाथ की ताली बजा के आपका इस सभा के अंदर अभिनंदन करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के इस महायज्ञ में, मधुबन वरदान भूमि में, आप सभी बहुत लगन के साथ तपस्या करने के लिए आए हैं। बाहरी मौसम, प्रकृति का अपना ही आनंद और उसके बीच में बाबा की ये चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि, जहाँ कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी का अनुभव हम सब यहाँ कर लेते हैं। बाबा के यज्ञ में, इस मधुबन घर में, एक एक कण बाबा की याद दिलाता है। जिधर भी जाओ, बाबा कैसे रहते थे, कैसे खेलते थे, कहाँ पर स्नान करते थे, ये चरित्र भूमि में बाबा के चरित्र ही सब जगह हैं। बताया होगा बहनों ने जो पहली बार यहाँ रहे हैं, कई बातें उनको पहले पहले जानने को मिली होंगी। मुझे तो बाबा के यज्ञ में करीब 42 वर्ष हो गए रहते हुए। 71 में मैं आया और तब से लेकर बाबा के यज्ञ की वृद्धि, उसका विस्तार बहुत नजदीक से देखने को, अनुभव करने को मिला है। अच्छा, बहुत बहुत भाग्यवान हो जो बाबा की तपस्या भूमि में आपको भी अनुभव करने का गोल्डन चांस मिला है। अपने भाग्य की ताली बजा सकते हो। बहुत से बाबा के बच्चे शांतिवन तो आ जाते हैं और सीजन में जब मधुबन में आते हैं तो हजारों की भीड़ के बीच में सिर्फ दर्शन करके चले जाते हैं, रहने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो आप सबको बाबा की इस चरित्र भूमि में रहने का सौभाग्य मिला। तो मैं कह रहा था कि बाबा ने ये रुद्र यज्ञ, जिसका पूरा नाम क्या है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, शुरू में ही जब ये ओम मंडली की स्थापना हुई तो बाबा ने इसको नाम दे दिया, ये यज्ञ रचा गया है, बड़े सेठ ने ये यज्ञ रचा है और सारी पुरानी दुनिया की इस यज्ञ में आहुति पड़ने वाली है। किस लिए यज्ञ रचा? परिवर्तन के लिए, पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। वैसे भी दुनिया के अंदर जो यज्ञ रचे जाते हैं स्थूल रूप में, कोई न कोई जब बहुत बड़ी आपदा आ जाती है तो उसको टालने के लिए यज्ञ किए जाते हैं। कभी बरसात नहीं पड़ती है तो यज्ञ रचते हैं, कभी बहुत बाढ़ आ जाती है तो भी यज्ञ रच देते हैं, कोई और किसी के ऊपर ग्रहचारी बैठती है तो उसको हटाने के लिए यज्ञ रच देते हैं कि यज्ञ करा लो सब ठीक हो जाएगा। और उस यज्ञ के अंदर तो ब्राह्मण लोग अपनी पेट पूजा भी करते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ कमाई का साधन बनाया हुआ है भक्ति में। तिल जौ घी उसकी आहुति देते, स्वाहा स्वाहा का मंत्र जाप करते, तेज अग्नि जलती है और उसमें सबसे स्वाहा कराते हैं। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा इसका यज्ञ क्यों नाम दिया? कौन सी अग्नि है यहाँ पर? योग अग्नि जल रही है, दिखाई देता है, वो है लगन की अग्नि। जितनी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर लगन बढ़ती जा रही है उतनी इसकी अग्नि प्रज्वलित होती जा रही है। दिखाई देता है कि बहुत सी आत्माएं आकर के अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब स्वाहा कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि तेज हो रही है। तो इस अग्नि के अंदर हम सबने कोई आहुति दी है? दी है, दी है। क्या दिया है आहुति? बाबा तो हम सबसे कहता है, बच्चे जो भी कमी कमजोरियों के तिल जौ हैं उनकी आहुति दे दो। बहुत से ऐसे संस्कार हैं, ऐसी कमियां हैं जो आत्मा को परेशान करती हैं। अगर हम बाबा के यज्ञ में उसको अर्पित कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं, तो सदा के लिए वो समाप्त हो जाती है। तो जब से हम बाबा के बने, बाबा ने हमारे तिल जौ स्वीकार कर लिए, हमें कमी कमजोरियों से मुक्त कर दिया। और ऐसे संस्कार जो न चाहते हुए भी कभी कभी अपना रूप दिखाते हैं। बाबा कहते जब ऐसी भट्टी करते हो, एकांत में बैठते हो, तो उन कमियों और कमजोरियों को, उन पुराने संस्कारों को रियलाइज करके, बहुत अंदर से महसूस करके उनको सुहा करो, बाबा को अर्पित कर दो इसी यज्ञ के अंदर। तो मैं समझता हूं आप सबको बड़ा अच्छा चांस मिला है अपनी कमी कमजोरियों को सुहा करने का, चेक करना और दिल से दृढ़ता से प्रतिज्ञा करके बाबा के आगे रख देना, बाबा आप लो सुहा कर लो, समाप्त हो जाए। अग्नि में कोई चीज चली जाती है तो एकदम परिवर्तन हो जाता है, उसका रूप रंग भी चेंज हो जाता है। तो बाबा भी हम सबको इस बेहद यज्ञ के अंदर पहले अश्व सुहा करने की प्रेरणा दे रहा है। वो अश्व नहीं, वो घोड़ा नहीं जिसकी बलि दे दो, लेकिन जो मैं और मेरेपन का अश्व है, देहाभिमान का अश्व है, उस देहाभिमान के अश्व को सुहा करना। क्योंकि सभी विकारों की, सभी बुराइयों की जड़ देहाभिमान ही है। जितनी समस्याएं इस दुनिया के अंदर हैं, उनको समाप्त करने के कितने भी प्रयास किए जाएं, लेकिन जब तक जड़ को समाप्त नहीं किया, जड़ को नहीं काटा, तब तक समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। तो हम सबको तो बाबा ने महसूस करा दिया ना कि सभी पापों का बाप देहाभिमान है। इसलिए पहले दिन ही ये पाठ पढ़ाया बच्चे अपने को आत्मा निश्चय को, आत्मा समझ के चलो, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो, इस देह से डिटैच हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। तो जब हम इस देह से डिटैच होते हैं और बाबा के लगन में मगन हो जाते हैं, तो सबसे पहले देहाभिमान का अंश समाप्त होता है, उसको गला देते हैं। वैसे भी कहते हैं जो पांडव थे पहाड़ों पर गल गए, कहने और समझने की सोचने की बात है, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा युद्ध किया, और युद्ध करने का परिणाम क्या दिखाया कि एक एक पांडव पहाड़ पर जाता गया और गल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन बाबा ने हम सबको, हम पांडवों को बताया है कि बच्चे ऊंची स्थिति में, पहाड़ माना ऊंची स्थिति, ये पहाड़ नहीं माउंट का, यहां गलने की बात नहीं है, लेकिन एक ऊंची स्थिति में स्थित होने से देहाभिमान गल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसी ऊंची स्थिति बना करके देहाभिमान को गलाना है, और जब देहाभिमान गल जाएगा तो उसकी एक बहुत सुंदर निशानी, हर कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे लगेगा मैं तो शीतल काया वाला योगी बन गया। अंग अंग शीतल कहते, योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल है, अंग अंग सुगंधित है, कोई भी प्रकार की विकारों की बांस बदबू नहीं रहती। तो ऐसी ऊंची स्थिति में, योग की तपस्या में, हम सब अपने पुराने संस्कारों के साथ इस देहाभिमान को गलाएंगे, ठीक है ना। आत्म अभिमानी स्थिति ऐसी बन जाए जो हरेक के मस्तक पर वो मणि चमकती हुई दिखाई देने लगे। अभ्यास करके देखना, बड़ा मजा आएगा। चलते फिरते ऐसे लगेगा ये सितारों की महफिल है, सब सितारे ही चमक रहे हैं, और ड्रेस जो पहनी वो लाइट की है, मिट्टी की नहीं है, बहुत हल्की, हड्डी मांस का पुतला भी भूल जाए। तो हम सब बाबा के इस यज्ञ के अंदर अपनी कमी कमजोरी, पुराने संस्कार, जो देहाभिमान का अंश है, उसको भी स्वाहा करेंगे, और साथ साथ यज्ञ, जब बाबा शब्द कहते हैं तो यज्ञ माता को जरूर याद करते हैं। कौन है यज्ञ माता? जगदम्बा सरस्वती। उसके शास्त्रों में गायन में आता है द्रौपदी का भंडारा, द्रौपदी का डेगरा, जिसमें जितने भी आने वाले आते जाएं खाते जाएं कभी कुटता नहीं है, इतना भंडारा भरपूर है। कहते एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि उसके भंडारे में आ गए भोजन के लिए। अचानक दुर्वासा ऋषि उनके पास पहुंच गए और बहुत प्रसिद्ध थे कि अगर कुछ भी नीचे ऊपर होता तो श्राप दे देते थे। और भंडारे के अंदर उस समय कुछ भी नहीं था, तो द्रौपदी ने भगवान का आह्वान किया और भगवान ने कहा अच्छा जो कुछ है मुझे तुम खिलाओ। तो बोला भैया कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं? तो बोला डेगरा दिखाओ। अच्छा, तो डेगरे के अंदर एक चावल कहीं चिपका हुआ था, वो चावल भगवान ने निकाला और खा लिया, और खाते ही भंडारा भरपूर हो गया। जितने संत आए, जितने ऋषि मुनि आए, उस देव द्रौपदी के डेगरे से खाते गए, कोई भी भूखा नहीं गया। हम प्रैक्टिकल बाबा के इस यज्ञ को देख रहे हैं, चाहे 30,000-35,000 की सभा हो जाती है, वो भी यज्ञ था जब हम लोग बचपन में इस यज्ञ में आए, 15-16 साल की हमारी उम्र थी, और केवल एक छोटा सा मधुबन जो ये पुराना बाबा का कमरा और स्थान देखते हुए थोड़ा रिन्यू किया गया है, 3 सीट का ही था। और उस समय हिस्ट्री हाल बन गया था, बाबा के समय इंद्रप्रस्थ भी बन रहा था और ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर की बिल्डिंग बन रही थी। बहुत छोटा सा मधुबन था, अगर 100 लोग अगर आ गए तो हम लोग दादी को कहते दादी बहुत बड़ी सीजन है। क्यों सीजन क्यों कहते थे? क्योंकि जहां हम रहते थे दादी कहती थी सब लोग बाहर आ जाओ, कमरे खाली कर दो और उसमें दरी बिछा दो, सब सो जाएंगे। तो हम लोगों को बाहर मिलता था स्थान, चारपाई हम लेके बाहर आ जाते थे ब्रांडों में, और जो पार्टियां आती थी उनको कमरा दे देते थे। और कोई भी साइंस के साधन नहीं थे, जो आज की इतनी सब साइंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मधुबन में आपने सुना होगा बेगरी पार्ट से थोड़ा सा ऊपर, बहुत बेगरी पार्ट था, और धीरे धीरे सेवा केंद्रों की वृद्धि हुई, बाबा के बच्चे बढ़े, बच्चों ने फिर देखा बाबा के घर में ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, तो जितना जितना स्नेह बढ़ता गया, यज्ञ स्नेह ही टाइप टॉपिक रखी है इसीलिए कि जितना बच्चों का स्नेह बढ़ता गया, बाप भगवान इस सृष्टि पर आया है, स्वर्ग रचने के लिए आया है, और भगवान के घर में ये चीज की जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, बस ऑफर होती गई, आता गया। और ऐसा आता गया गुप्त रीति से, कौन भेज रहा है कुछ पता नहीं है। तो वो दृश्य मुझे याद आते हैं जब हम मधुबन में आए, तो उस समय खाना भी बहुत लिमिटेड, भोजन भी ऐसा मिलता था सबको, वस्त्र भी जो मिलते थे उसके लिए भी बहुत बहुत इकोनॉमी थी, बहुत इकोनॉमी। फल तो कभी देखा ही नहीं होगा क्या होता है, और इकोनॉमी से दीदी और दादी इस यज्ञ को इतना प्यार से खातरी भी करती थी, कोई मेहमान आते थे तो उनके लिए स्पेशल खातरी भी होती थी, लेकिन विशेष ध्यान खिंचवाती थी इकोनॉमी, हर चीज में इकोनॉमी, कोई खर्चा व्यर्थ नहीं करना, एक भी मजदूर घर में नहीं, एक भी मजदूर नहीं। हम लोग 40-50 लोग यहाँ थे सरेंडर, 20-25 बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें थी जो सेंटर से बड़ों रिटायर हो गई उम्र में, और 15-20-25 भाई थे, तो वही सारा घर का काम करेंगे, झाड़ू लगाना है, सफाई करना सारे घर की, पानी गर्म करना है, धोबी घाट करना है, रोटियां बनानी है, जितना भी ग्रुप आए चूल्हे पर रोटी बनती थी, लकड़ी बहुत गीली होती, इतनी ठंडी अभी नहीं होती, इतनी बरसात भी नहीं होती। हम लोग जब आए, इतनी बरसात, इतनी ठंडी, जो जब रोटियां पकाते थे ना, तो ये आंखें एकदम जैसे लाल लाल हो जाती थी, आंसू टपकते रहते थे। अभी तो साइंस ने इतने सुख दिए हैं, जो आज स्टीम है, रनिंग वाटर है, धोबी घाट मशीनों पर चल रहा है। पहली पहली जो धोबी घाट की मशीन आई ना, एक बॉम्बे का भाई था घाटकोपर का, उसके पास धोबी घाट था, वहां चलता होगा, मशीनें थी। वो मधुबन में आया तो हम लोग धोबी के जैसे कपड़े छोड़ धोते थे पाटे पर खड़े होकर के। यहाँ पाटा था, इधर दो पाटे लगाए थे, और सुबह सुबह उधर मुरली क्लास होता था, इधर हमारा धोबी घाट क्लास होता था। सबके कपड़े रात को भट्टी में चढ़ाते थे और सुबह सुबह धोते थे। तो वो सब देख करके उसको आया कि इतनी मेहनत करते हमारे भाई लोग समर्पित, हम एक मशीन भेज दें, कौन चलाएगा, कैसे चलेगी, बिजली भी इतनी नहीं है। फिर भी उसको इतनी धुन थी, वो गया यहां से बॉम्बे, उठा करके एक मशीन भेज दिया। धोबी घाट की मशीन आई 83-84 में। और उसके बाद धीरे 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 आज कहां यज्ञ पहुंच गया जाकर के। यज्ञ से नहीं, बाबा के बच्चे जहां भी निकले, जैसे भी निकले, हर बात खुद भले नहीं खाएं, खुद भी कुछ नहीं करें, बाबा के यज्ञ में, बाबा के यज्ञ में। और उसके आधार से यज्ञ को इतना फलता फूलता बढ़ता देख रहे हैं। जिन्होंने गुप्त सहयोग दिया है, वैसे भी कहते हैं जो फाउंडेशन होता है, जो गुप्त होता है, वो अंडरग्राउंड होता है। आज ताजमहल इतना सुंदर दिखाई देता है, उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लोग करेंगे, लेकिन ताजमहल खड़ा किसके ऊपर है? वो कौन सी ईंटें हैं जिसके ऊपर इतना सुंदर महल खड़ा है? उसकी फोटो तो कोई नहीं निकालता है, वो तो अंडरग्राउंड है ना, मिट्टी में दबा हुआ है। तो इतना बड़ा जो हम सब यज्ञ देख रहे हैं, विस्तार देख रहे हैं, वृद्धि देख रहे हैं, इसके अंदर कोई फाउंडेशन है, गुप्त बच्चे हैं बाबा के। और वो इतने स्नेही हैं, इतना उनका दिल से यज्ञ के प्रति प्यार है कि बाबा के यज्ञ के अंदर जो आवश्यकता है मैं पूरी करूं। बहुत गुप्त तरीके से, तन से, मन से, धन से, समय से, जो विशेषताएं हैं, जो चीजें उनके पास हैं, वो अपना गुप्त रीति से भेज भेज करके यज्ञ को बढ़ा रहे हैं। आज तक भी आज इतना बड़ा भंडारा चलता है, कई चीजें तो आवश्यक खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कई चीजें हैं जो बाबा के गुप्त बच्चे ही भेजते हैं। जैसे आपको पता होगा, हजारों बोरियां गेहूं की जाती हैं, चावल कितना जाता है? हम एक दिन पूछा, 30-35 हजार लोग जब भंडारे में भोजन करते थे, कितना चावल बनता होगा? तो बोला 40-50 बोरा बनता है, 40-50 बोरी, एक दो नहीं। कितने कट्टे आटे के होंगे? 35-40 कट्टे, जो छोटे छोटे 20-20 किलो के कट्टे होते हैं। इतना पीस रहे हैं, इतना बन रहा है, इतना भंडारा चल रहा है, इतने ब्राह्मण आ रहे हैं, खा रहे हैं, तीनों टाइम भोजन मिल रहा है, ऐसा भी नहीं एक टाइम बंद कर दिया है। बाबा के गुप्त बच्चे जहां भी हैं, एक एक बोरी इकट्ठी करके गेहूं भेजते हैं कई स्थानों से। कहते हैं सेंटर्स पर बहनों को, कहते हैं हमारे खेत में इतना गेहूं निकलता है, एक बोरी बाबा की यज्ञ में मैं भेजता हूं, क्या जाएगा? ऐसे अगर 100 बाबा के बच्चे तैयार हुए तो 100 बोरी का एक ट्रक करके भेज दिया, पंजाब साइड से, गुजरात साइड से, चावल आंध्रा साइड से, बेंगलोर साइड से, जहां बहुत उस साइड में होता है, फैक्ट्रियां हैं उनकी। बाबा के गुप्त बच्चे अपना ट्रक का ट्रक भेज देते, कहते हैं बाबा का, बताना नहीं किसी को, जरूरत नहीं बताने की, लेकिन एक एक बाबा का बच्चा जो यज्ञ से स्नेही है, यज्ञ को जानता है कि भगवान का रचा हुआ रुद्र यज्ञ है, और इस यज्ञ में जितना मेरा तन मन सफल होगा उतना यज्ञ पिता प्रसन्न हो जाएगा। जिसने जिस ब्राह्मण आत्मा यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मण हम सब है ना, आप समझते हो कौन है हम? बाबा ने हम सबको यज्ञ की संभालने के लिए ब्राह्मणों का टाइटल दिया है। पहले कह दिया ये जितने बच्चे मेरे हैं वो सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, मैंने अडॉप्ट किया है, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं, क्योंकि मेरी कोई स्त्री नहीं है। आज कहा ना मुरली में, मैंने शादी की नहीं है लेकिन मैंने बच्चे जरूर पैदा किए। बड़ा रमणीक है ना बाबा, आज की मुरली थी ना ऐसी, कितनी रमणीकता से बाबा बोलता है बच्चे मैंने शादी नहीं की लेकिन मेरे बच्चे बहुत हैं। तो इतने बच्चे बाबा ने अडॉप्ट किए और उन सबको टाइटल दिया ये ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ये ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण माना ही यज्ञ रक्षक, ब्राह्मण माना ही यज्ञ की संभाल करने वाले, यज्ञ स्नेही, यज्ञ सेवाधारी, वही ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण होते ही इसीलिए हैं, सबका सफल करा दें और अपना भी सफल कर लें। जो कुछ भी है, बाबा ये नहीं कहता है तुम भूखे सो जाओ, सब यज्ञ में दे दो, लेकिन जो है और जितना है बहुत सच्चाई के साथ, बाबा ये सब तेरा है, भक्ति में तो सिर्फ कहा है, मंदिरों में गए आरती गाई जय जगदीश हरे कहा और कह दिया ये सब तेरा है, लेकिन अगर भगवान कह दे 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 तुम मुझे, नहीं नहीं ये आपका भी मेरा है। अब बाबा कहता ये अभी ठगी नहीं चलेगी, भगत तो ठगत थे, अभी ठगी नहीं चलेगी, अभी जो तुमने कहा है वो मैं लेने के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हारे पास है भी क्या? कखपन, कखपन माना बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें जो कख के अंदर बगल के अंदर छिपाई जा सके। क्या छिपाया था सुदामा ने? वही है कखपन। बेचारे को बड़ी शर्म थी उसको कि मैं कैसे भगवान के दरबार में चावल लेके जाऊं, लेकिन उसकी युगल समझा रही थी तुम जा रहे हो अपने सखा से मिलने के लिए, कुछ तो ले जाओ, कुछ है ही नहीं, नहीं नहीं जो है वो ले जाओ। उसने चावल बांध करके दिए, उसने कख के अंदर ऐसे छिपा लिए कि अब भगवान को मैं कैसे बताऊंगा मैं क्या लाया हूं। और भगवान जाते ही पूछता है भाभी ने क्या दिया है, तो बेचारा शर्म के मारे बता नहीं रहा था, कहते भगवान ने उसे ऐसे छीन लिया, और जब छीन लिया तो चावल खाने लगा, और एक मुट्ठी खाई तो एक महल दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई दूसरा महल दे दिया। तो रुक्मणी को आया कि रे तो सब कुछ दे देंगे, तीनों लोक दे देंगे, तो रुक्मणी ने बीच में छीन लिया, रोक लिया, कहानी है। लेकिन प्रैक्टिकल तो संगम पर यही खेल मैं देख रहा हूं, भगवान के नाम पर लोग कख ही चावल ही ला रहे हैं, चावल माना स्थूल में चावल नहीं, लेकिन स्थूल में भी कई ऐसे भोले भाले सच्चे माताएं हैं, बच्चे हैं, जो छोटी छोटी पोटलियों में कितनी चीजें भेजती हैं। अगर आप कहानी सुनेंगे ना, भोली दादी थी तो बताती थी, आज इस माता ने ये चावल भेजे है, आज इस माता ने दाल भेजी है, इस माता ने हल्दी बांध के भेजी है कि भंडारे में लगा देना जाकर के, वो इतनी इतनी पोटली छोटी छोटी, तो बाबा की यज्ञ में जाएगा लिख देती थी, बाबा को कह देती बाबा के भंडारे में सबके बीच में मिला के खिला देना। और बाबा उनको इतना प्यार करता था, इतना स्नेह करता था, उनकी नाम क्लास के बीच में लेता था। कई बार मुरलियों में सुना होगा गुड़गांव की माताएं, यहां की माताएं, ऐसे थोड़ी नाम लिया बाबा ने, बहुत भोली बहुत सच्ची और बहुत सच्चाई के साथ जो कुछ उनके पास था वो सब बाबा के यज्ञ में सफल किया। था ही इतना है किसी के पास और फिर भी कंजूसी करे, मान लो आज बहुत कुछ किसी के पास हो तो उसकी भी कहानी है। सत्यनारायण की कथा जो सुनते हैं ना, सुनिए ना माताओं ने, भाइयों ने भी सुनी है, लीलावती कलावती की कहानी मालूम है ना? कहानी तो क्या बनाई है, कथा तो कोई दिखाई नहीं देती, लेकिन बड़ी विचित्र बातें उसके अंदर दिखाई हैं, और वो प्रैक्टिकल इस समय की घटनाएं हैं। कहते एक जवाहरात से भरा हुआ स्टीमर लेकर के, बहुत माल लेकर के विदेश से आ रहा था, और भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और जब भगवान उसके बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आए तो उस व्यापारी ने समझा पता नहीं कौन भिखारी सामने आ गया। पूछ दिया उसने इसमें क्या है, तो कहता है इसमें तो लत्ता पत्ता है, कुछ नहीं है। और भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के द्वारा कह दिया तथास्तु। तथास्तु कहते ही जो भरा हुआ था माल वो सब वही बन गया जो कहा था। कब की कहानी है ये? सत्यनारायण की कथा है, इस संगम की कहानी है। बाबा कहता बच्चे कभी भी ये नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं कह दिया या मैं ऐसा ही हूं तो बाबा कहीं तथास्तु तो कह देगा ये बूढ़ा ब्राह्मण है यही है जिसको पहचान नहीं रहे लोग। इसलिए कोई भी छोटी मोटी भी विशेषता है बाबा ये तेरी देन है, तेरे काम में लगा दूं मैं। तन है, मन है, धन है, समय है, विशेषता जो कुछ दिया है हर एक को एक जैसा तो प्राप्ति नहीं है, लेकिन जितना भी है सच्चाई तो चाहिए। सच्चाई की परीक्षा है, सच्चाई से कहें बाबा ये सब तेरा है, तेरे काम में लगाने के लिए ही है। बाबा कहेगा मैं क्या करूंगा, मुझे थोड़ी यहां महल बनाने हैं, मैं तो बिंदु हूं, मुझे तो कुछ तुम्हारा नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना तुमने जो कहा है ये सब तेरा है ये तुम अमानत समझ करके संभालो। अब विचार करके देखो ये तन जो मैंने बाबा को कह दिया सब तेरा है ये उसने हमको दिया है संभालने के लिए, भगवान की प्रॉपर्टी है ये। इस तन को मैं कहीं पर भी दूसरे मार्ग की तरफ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी अमानत है, इसको संभालना है मुझे। कहीं भी गलत कदम नहीं उठ सकते, गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, और अगर जाते हैं तो बाप का नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए ध्यान ये रखना कि जब भगवान की अमानत को मैं संभाल रहा हूं, ये तन उसका है, तो इस तन को कुछ ऐसा खिला पिला भी नहीं सकता, ऐसे स्थान पर इसको ले भी नहीं जा सकता जिसके लिए भगवान ने वर्जित किया है, मना किया बच्चे यहां नहीं जाना, इस स्थान पर नहीं जाना, ऐसे संग में नहीं जाना, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना और ऐसी चीजें नहीं खाना। अगर कोई भी ब्राह्मण आत्मा भूल चूक से भी बैज लगा हुआ हो या गाड़ी में आपके स्टिकर ही लगा हुआ हो और आप कहीं ऐसे इलाके के अंदर जहां पर गंदगी होती है, जहां ऐसा खान पान है, होटल है, क्लब है, फलानी जगह है, आप लोग तो जानते हैं सब, और उस एरिया के अंदर भी आप प्रवेश करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यहां भी ब्रह्मा कुमार आते हैं, भले आप घूमने ही गए हो, साइड से ही गए हो, फिर भी लोग कहेंगे यहां भी ब्रह्मा कुमार, क्योंकि उनकी नजर हमारे ऊपर 24 घंटा है। वो कुछ भी करें उनके लिए सब माफ है, लेकिन अगर बाबा के बच्चे बन गए, ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, तो लोगों की नजरें तेज हो जाती हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई करते हैं तो पहले लोग कहते थे कि इनको ब्रह्मा कुमारियां गलत पढ़ाती हैं। पहले हमारी संस्था का नाम आता था, शुरू शुरू में हम लोग जब आए तो कहते थे इनको पढ़ाया जाता, भगाया जाता, इनको हिप्नोटाइज किया जाता है, कुछ न कुछ गलत इनको सिखाया जाता है। लेकिन आज इतना तो बदलन परिवर्तन आ गया है जो कहते संस्था बहुत अच्छी, ज्ञान बड़ा अच्छा है, इनकी शिक्षाएं और इनके नियम मर्यादाएं बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये ठीक नहीं है। पहले कहते थे संस्था ठीक नहीं है, संस्था गलत काम कर रही है, वो ट्रेनिंग दे रही है, और आज कहते हैं संस्था बड़ी अच्छी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, कुछ इसके अंदर होगा ऐसा, इतना परिवर्तन अभी दिखाई देता है। तो हम सब बाबा के बच्चे बने हैं, हमारी हर एक्टिविटी को लोग देख रहे हैं। बाबा कहता तुम अकेले अभी नहीं हो, कहां हो, ग्लोब पर हो, विश्व की स्टेज पर हो, एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी कोने में छिप करके नहीं रह सकता है। कुछ भी करेगा तो आज हाईलाइट हो जाएगा, पूरे विश्व के अंदर आ जाएगा, चारों तरफ से सीआईडी लगे हुए हैं, माया के सीआईडी घूम रहे हैं, बाबा के नहीं है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे बहुत सावधान, कदम कदम फूंक फूंक करके रखना, कहीं पर भी बाबा का नाम बदनाम न हो, कोई भी मेरी ऐसी एक्टिविटी न हो जो यज्ञ पिता और यज्ञ माता के ऊपर कलंक आ जाए। यही बड़ा, सबसे बड़ा विघ्न है। कहते हैं असुरों ने विघ्न डाले, हमारी आसुरी वृत्तियां ही सबसे बड़ा यज्ञ में विघ्न पड़ती हैं। यदि मेरी वृत्तियों में परिवर्तन नहीं आया, मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया, हमारी विकारी भावनाएं बनी हुई हैं, हमारे अंदर भी वो वृत्तियां लोभ की, क्रोध की हैं, आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, बहुत सारा रूप है विकारों का। अगर किसी भी विकार के अधीन हैं हम सब, तो बाबा का नाम बदनाम होता है। इसलिए बाबा कहता है इसको बच्चे सुहा करो, यज्ञ पिता को प्रसन्न कर लो, आपकी सब मनोकामनाएं बाबा पूरी कर देगा। हम लोगों के जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव है, आज तक भी कोई चीज में मेहनत मांगने की आवश्यकता अनुभव नहीं की, कभी कोई चीज की अप्राप्ति स्थूल में भी हमारे जीवन में नहीं है। हमारी दादियां तो कहती हैं हमारी पालना बाबा ने ऐसे की जैसे राजाओं महाराजाओं की भी नहीं हो सकती है। लेकिन चलो बीच में वेगरी पार्ट की परीक्षाएं भी ली, आज उस समय में हम पहुंचे हैं जहां पर मुझे, हम सबको प्रैक्टिकल अनुभव होता है, हम सब पर यज्ञ पिता यज्ञ माता इतने प्रसन्न है कि आज कोई भी संकल्प भी उठता है तो प्राप्ति हो जाती है। संकल्प भी उठाने की जरूरत नहीं, सब चीजें हाजिर हो जाती है, मौजूद है, ऐसे लिखाई देता सब है, कुछ कमी नहीं हमारे अंदर, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। और हमेशा मैं इन दोनों को, यज्ञ माता और यज्ञ पिता को, शुरू से इसी नजर से देखता हूं, एक है कपल मुनि, एक है कामधेनु मां, एक है कामधेनु मां। कामधेनु किसको कहते हैं? कहते कपल मुनि के आश्रम में गाय रहती थी, और वो गाय जो थी वो सब मनोकामनाएं पूरी करती थी। अब एक स्थूल में जानवर गाय कैसे होगी जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करे? लेकिन ये कपल, कपल माना जोड़ा ना, जोड़ा है ना, ये ब्रह्मा बाबा कौन है इसके साथ जुड़ा हुआ, ये कपल मुनि है, और उसकी बेटी जो है वो कामधेनु मां है। ये कामधेनु मां और कपल मुनि का आश्रम है, यज्ञ है, उसने यज्ञ रचा है, और उसमें जो बच्चे दिल से स्नेह से अपना समझ करके सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर वो यज्ञ पिता यज्ञ माता प्रसन्न हुआ है, तो क्या कोई भी अप्राप्ति उसके जीवन में रह सकती है? विचार करके देखना, सचमुच अगर मैंने दिल से भगवान के यज्ञ की सेवा की है, तन लगाया है, मन लगाया है, धन जो था वो लगाया है, कोई भी विशेषता में हां जी किया है, तो दादियां तो प्रसन्न हैं ही, उनकी तो आशीर्वाद है ही, लेकिन गुप्त रूप से अनुभव होता है कि हमारे माता पिता हमारे पर बहुत प्रसन्न है। न योग लगाने की मेहनत करनी पड़ती है, न कोई चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ अपने आप प्राप्ति हो रही है। हम सभी भी इस यज्ञ किसका है, यज्ञ पिता कौन है, यज्ञ माता कौन है, बहुत पहचान करके निश्चय के आधार से अपने आप को इस सेवा में समर्पित करें। जिसने जितना किया है, जो किया है, मुझे याद है कि कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं, अभी तक भी मैं देखता हूं, सेंटर बन रहा होता है, मधुबन में कोई बड़ा काम चल रहा होता है तो सेंटर की परवाह नहीं करते, मधुबन में पहले, मधुबन में पहले, मधुबन महायज्ञ है, और उनके पास कहां से आता है, कितना आता है समझ में नहीं आता, वो भेजते जाते। एक माता ने संकल्प किया जब ज्ञान सरोवर बन रहा था, ऐसे अचानक उसको संकल्प आया, कहती बाबा का अपना घर तो बाद में बन जाएगा, यह ज्ञान सरोवर बन रहा है ना, मैं इतना पैसा भेजूंगी। कहती पता नहीं कहां से बाबा ने दूसरे दिन ऐसे ही एक व्यक्ति आया कि हमारा ये ले जाओ यज्ञ में दे देना जाएगा, संकल्प मैं करती हूं उतने से ज्यादा बाबा भेज देता है, संकल्प करने की जरूरत है। कईयों को जैसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक भाई ने डॉक्टर था बताया मुझे, युगल आता है, अभी कुछ दिन पहले यहीं पर एक मकान था, बॉम्बे का युगल था, डॉक्टर था, कहता है मैंने संकल्प किया कि जो बड़ा नोट आएगा बाबा के यज्ञ में भेजूंगा, बड़ा नोट डिस्पेंसरी में जो बड़ा नोट आएगा। उस समय 500 का नोट था, 1000 का नोट बाद में निकला, तो जितने 500 के नोट आए वो अलग करता जाता है, मास में इकट्ठा करके यज्ञ में भेज रहा है। कहता है एक दिन भी मुझे ऐसी महसूसता नहीं हुई, चाहे जितनी खर्चे हों हमारे, बाबा इतना भरपूर करता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और बाबा के घर में 500 के नोट जा रहे हैं। बाबा अपने आप भर रहा है, बच्चों को भरपूर कर रहा है, लेकिन सच्ची दिल देखता है, दिल का सौदा है, स्थूल का देखता है, ये ऊपर ऊपर से करता है, अंदर एक है बाहर दूसरा है, तो बाबा भी देखता है, हाँ जितने का उतना दे देता है, लेकिन एक का पदम गुना मिल जाए, रिटर्न हो जाए, वो दिल से सच्चे दिल से जो है जितना है जैसा है भाई बाबा ये तेरा है, आपके ही काम में लगेगा। भले बाबा कहता है, कई बार परिवार वालों को कहता है भाई तुम्हारी बेटी है शादी करनी है करो, परिवार है परिवार के लिए रखो हिस्सा बनाओ, लेकिन मोह ममता के वश होकर देखा देखी के कारण एक दूसरे से भेंट करके ये यज्ञ की अमानत, बाबा का दिया हुआ धन है बाबा का, आपने तो दे दिया ना, उसको किसी शौक मौज में व्यर्थ नहीं करना। कम से कम खर्चे में सब काम अच्छे से अच्छा हो सकता है, बाबा ने सिखाया है, कोई भी प्रकार के फालतू खर्चों में अपने यज्ञ की अमानत को बर्बाद नहीं करना, करो सब कुछ, ऐसा मना कुछ नहीं किया है, लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं, जहां पर जितना जरूरी है उतना करो, लेकिन बहुत समझ के सोच के भेंट नहीं करो, इसने इतनी शादी में खर्चा किया, इसने ऐसा किया ऐसा, इसने ऐसा किया मैं भी कुछ करूं। बाबा कहता है कभी भी ऐसा सोच करके कोई से कर्जा लेकर के नहीं करना, कर्ज भी एक मर्ज बन जाता है, कर्ज वाले का योग कभी नहीं लगता है, इसलिए कभी भी ऐसा कर्जा लेकर के गलत काम में व्यर्थ में दिखावे में अपने पैसे को नहीं लगा देना। जो कुछ है अमानत है बाबा की, सफल हो जहां जरूरी है वहां सफल करें लगाएं, और बाबा के कार्य में अधिक से अधिक लगेगा तो एक का कई गुना रिटर्न बाबा देने के लिए बंध जाएगा। मैं आपको 3-4 कहानियां सुनाता हूं, आप यज्ञ के अंदर आए हैं, पता नहीं होगा आपको ज्ञान सरोवर कैसे बना, ओम शांति भवन कैसे बना, सुख धाम कैसे बना, भगवान की कैसे लीला चलती आई है, वो शांतिवन कैसे बना, एक एक के पीछे बड़ी विचित्र कहानियां हैं, और वो कैसे ऊपर से बैठ करके हैंडलिंग करता है वो मैं साक्षी होकर के देखता हूं, इंसान के बस की बातें नहीं है सब, और देखने वाले भी अनुभव करते हैं, ये कोई व्यक्ति की बात ही नहीं हो सकती है, कौन करा रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, इतनी वृद्धि हो रही है, देख रहे हैं लोग आते हैं वीआईपी, कोई दिखाई तो देता नहीं है, कोई बड़ा तो ऐसा है ही नहीं, कोई बोझ तो है ही नहीं, अचंभ बहुत अचंभित होते हैं बड़े बड़े वीआईपी जा करके, बड़े दिखते हैं चारों तरफ से, कैसे सब चल रहा है, कौन करा रहा है, मैं वो दिखाई नहीं देता है, अगर उसी को देख लोगे तो सब कुछ देख लोगे, और हमने सबने तो देख लिया है ना। तो ओम शांति भवन जब बना तो पैसा तो यज्ञ के अंदर इतना था नहीं, विदेश से सेवाएं इतनी नहीं थी, थी थोड़ी बहुत, लेकिन इतने बच्चे नहीं आते थे, और ये पहाड़ी इलाका सारा था, यहाँ रीच घूमते थे, अभी भी भालू कभी कभी आते हैं, पहाड़ था एकदम, चट्टाने थी, और एक भाई आया कि दादी ये हमारे कोई मित्र की है, जगह पड़ी हुई है और बहुत सस्ते दाम में आपको हम दिलवा देंगे। दादी ने कहा क्या करेंगे लेकर के, बाबा इशारा करता बच्चे ले लो। क्या बनाएंगे यहां पर दादी, बाबा पैसा तो कुछ है ही, अरे बच्ची आ जाएगा, 30-35 हजार में सारी जमीन ले लिया, ओम शांति भवन की उस समय के हिसाब से, पहाड़ थे तो चट्टाने थे, बेकार पड़ी हुई जमीन थी। अब जब उसका नक्शा तैयार होने लगा तो यहां कलेक्टर बड़ा विचित्र आ गया, टेढ़ा क्या कहें, विचित्र आ गया, और वो एक एक पत्थर तोड़ने में रोड़ा डालने लगा, नहीं तोड़ सकते हो, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, मजदूर लाए नहीं, मधुबन वाले जाते थे, दादी सब शाम को पहुंच जाती थी आगे आगे, कहती थी चलो घंटी बजाओ सब आ जाओ पांडव, सब बहनों सहित पहाड़ उठाए तोड़ेंगे, तो हम लोग जाते थे हथौड़े ले लेकर के, सब ने खून दिया है मधुबन वालों ने, क्योंकि तोड़ने का अनुभव तो था नहीं, इधर तोड़ते तो छिलका लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया, तो पहाड़ तोड़ते थे, जितना तोड़ पाए हम लोगों ने उतना तोड़ा। फिर जब कलेक्टर ऐसा आया उसने तोड़ने की नोटिस दे दी, बिल्कुल नहीं तोड़ना, पहाड़ नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमारा यहाँ मधुबन का एक भाई था, इंजीनियर आर्किटेक्ट कोई नहीं थे, उसने नक्शा बनाया एक सुंदर सा, जो देख रहे हो ना वो नक्शा, ये मधुबन वाले ने बनाया, और अगर पहाड़ तोड़ दिया होता ना, कोई अच्छे से तोड़वा दिया गया होता, छुट्टी मिल गई होती, तो ये जो आज इतनी शोभा है ना, ताज जैसा खड़ा ऐसा नहीं बनता, वो गिर जाता नीचे आ जाता। तो उसने विघ्न डाला तो इतना सुंदर भवन बन गया और कई कमरे नीचे निकल आए, अंडरग्राउंड 3 मंजिल बन गई उसके रोकने से ही बनी हो। जब बनने लगा तो दादी से सबने पूछा दादी आपके पास बजट कितना है, दादी कहती हमारे पास कोई बजट नहीं है, बाबा भेजेगा बनता जाएगा, और अधिक से अधिक एस्टीमेट निकाली केवल 9 लाख खर्चा होगा इसमें। सब बच्चे इधर उधर से डायरेक्शन गया 1 रुपए वाला, कि हर एक ब्राह्मण जो भी है 1 रुपया रोज निकाले और बाबा का ओम शांति भवन बनेगा। उस समय 1 लाख होंगे, अभी तो 9 लाख के ऊपर हो गए। सब ने बहुत प्यार से भंडारी रखी और भेजते गए। 1 साल के अंदर ओम शांति भवन तैयार हो गया, कुछ बजट नहीं है। जब कॉन्फ्रेंस की तो दादी जी ने कहा कि 3000 का हाल बनाया है तो 3000 से कम नहीं आने चाहिए, और यहां रहेंगे कितने, 500-1000 के अंदर रह सकते, चलो पट बना दो सब। तो दादी कहती है सारे होटल बुक कर दो, आबू के जितने होटल थे, एक भी होटल नहीं था जो फरवरी मास में 83 में ओम शांति भवन के उद्घाटन में न बुक किया हो, सब बुक कर दिए, और हम सबकी ड्यूटी लग गई वहां पानी गर्म करना और बिस्तर संभालना, सबको जो आए उनको वहां रखना, और सबका पहला अनुभव था, कुछ पता नहीं था होटलों का क्या हाल होता है, इतने गंदे बिस्तर हम लोग तो कभी हाथ नहीं लगाए, वो सब संभालने पड़े। लेकिन दादी जी ने कहा है तो सब लग गए जाकर के सेवा में, और उसमें 3000 से ऊपर संख्या आई, हाल एकदम खचा खच भरा था उद्घाटन में। और सबसे बड़ा वहां से यूनाइटेड नेशन से रॉबर्ट मूलर असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, वो आ गया, और आया तो इतना बड़ा परिवर्तन यज्ञ में हुआ है 83 कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे वो कायाकल्प चेंज हो गई। ओम शांति भवन का उद्घाटन क्या हुआ, पूरी व्यवस्थाएं जो हम लोग हाथ से धोबी घाट करते थे, रोटियां चूल्हे पर बनाते थे, बहुत सारी जो स्थूल सेवाएं थी वो सब धीरे धीरे साधन आते गए, उद्घाटन हुआ और साधन आए, पूरा परिवर्तन हो गया, मशीनरी युग आ गया, धीरे धीरे विदेशी आने लगे, सेवाओं की वृद्धि हो गई। फिर एक भाई निकला कि दादी ये जगह पड़ी है ना, ये मारवाड़ी की है और मैं ले सकता हूं उसे, कैसे लोगे, दादी आप मेरे पर छोड़ दो, वो सुखदाम वाली जमीन उसने ले लिया। सुखदाम वाली जमीन लिया तो बीच में यहां बहुत मजदूर रहते थे, ये जो अभी बाल उद्यान बनाया ना, बहुत मजदूर रहते थे, और वो मजदूरों के तो आप समझते हैं, उनका खाना पीना नाचना, और भील लोग थे सारे, हटा भी नहीं सकते, उनकी झोपड़ियां थी, घर थे, और इतना ज्यादा हंगामा होता था तो वीआईपी कोई वहां रखा जाए, इधर ओम शांति भवन उधर सुखधाम, और बीच में सारे भीड़ भड़ाके शराब पीने वाले हैं, मांस खाने वाले। तो बाबा एक दिन आए और बाबा ओम शांति भवन में आए तो बाबा को सवेरे 8 बज गया, पूरी रात रहे, आए 6 बजे, 16 घंटा रहे। तो बाबा को दादी ने कहा, दादी एक बिल्डिंग बाबा एक बिल्डिंग बनी है सामने, आप इसका उद्घाटन करो। तो बाबा कहते, अच्छा कैसे उद्घाटन करना? बाबा आप देख करके दृष्टि दे दो, उद्घाटन कर लेंगे हम। तो बाबा को उठा करके और हाल के बाहर लेकर के आए, और हाल के बाहर लाए तो बाबा की दृष्टि पहले झोपड़ी पर पड़ गई, सुखधाम नहीं देखा बाबा ने। तो झोपड़ियां देख के बाबा बोलते, ये सब क्या है? ऐसे बोलते, ये सब क्या है बाबा, यहां पर ही मजदूर लोग रहते हैं। ऐसे दृष्टि डाली, ऐसे दृष्टि डाल के बाबा अंदर चला गया, सुखधाम के लिए कुछ नहीं बोला। फिर स्टेज पर बोला आकर के, वो लिखा हुआ है वहां जो बोला। थोड़े दिन के बाद एक कलेक्टर यहां एसडीएम आ गया, और वो एसडीएम इतना फेवर वाला आया, वो उसको सिर्फ पता चल गया कि यहां पर ये लोग ऐसे रहते हैं आश्रम के बाजू में और इतना सब हो रहा है। उसने कहा, ठीक है मैं इनको अलग से मकान बना के देता हूं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना संस्था की तरफ से, हम लोग इनको मकान बना के देंगे। बड़े प्यार से उस एसडीएम ने जो इधर सेवा दी, फिर अपना गवर्नर भी आ गया चन्ना रेड्डी, वो भी आकर के बाल उद्यान का उद्घाटन किया करके, बोला ठीक है। बड़ी युक्ति से उनको यहां से हटवाया, बाबा की दृष्टि जो पड़ी थी, और उनको बड़े अच्छे स्थान बना के दिए दिलवाड़ा साइड में, वहां रह रहे हैं, खुश हैं सब। लेकिन बहुत प्यार से समझा समझो के गवर्नमेंट के अधिकार से उनको हटाया गया, बाल उद्यान बना, सुखधाम बना। जब ज्ञान सरोवर की जमीन लेनी थी, यज्ञ की बात सुनाता हूं, बहुत गुप्त बात है वो। तो सबसे पहले आबू में दादी को संकल्प आया कि बहुत वृद्धि हो रही है, कुछ स्थान बनना चाहिए। तो हमारे जो मुख्य 3-4 भाई हैं जिनका गांव वालों से कनेक्शन रहता है, तो उनको बोल के रखा था, देखना कोई जमीन मिले तो। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा एक अच्छा सन्यासी था, अभी शरीर छोड़ा 108 साल की उम्र में, और वो बाबा को बहुत मानता था, और हमारे मधुबन के भाइयों का बहुत से स्नेह भी था। ठंडी में उसको गर्म कपड़े, कंबल, ये वो खाना, कभी भोग, कभी कुछ उसको पहुंचाते रहते थे। गौमुख में रहता था, ऊपर गौमुख नीचे है, ऊपर रहता था वो। तो सन्यासी की इतनी भावना बन गई, क्योंकि एक बार वो बीमार पड़ा तो ऑपरेशन के लिए हमारे बनारसी भाई उसको लेके गए अहमदाबाद, सेवा भी दी। लेकिन जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उसने अनुभव किया कि ब्रह्मा बाबा मेरे साथ है, पूरा टाइम बाबा साथ है, बच्चे डरो नहीं, मैं साथ हूं। बाबा उसको अनुभव कराया, तो अनुभव कराने के बाद वो वहां से आया, उसको इतना बाबा में विश्वास बैठ गया कि मैं बाबा को यहां 30-35 एकड़ जमीन है हमारी गौमुख की, सन्यासियों की है, और हमारे पास ही है, हम ये यज्ञ में देंगे। उसने सारे कागज हमारे भाइयों को जो जाते थे उनके पास दिए कि इसकी लिखा पढ़ी करवा लो, आप हमारे जीते जी, और ये जमीन मैं बाबा को दूंगा। तो दादी तो खुश, सब खुश हो गए मधुबन वाले कि भाई हमारी संकल्प की शक्ति से इतना अच्छा स्थान मिला है। लेकिन दादी ने कहा कि नहीं, मैं बाबा से बिना पूछे नहीं लूंगी, बाबा से पूछेंगे। तो बाबा को नीचे छोटे हाल में गद्दी पर नीचे बुलाया, हम सब मधुबन वाले बैठे थे, और बाबा आते इतना सीरियस रूप में ऐसे दृष्टि दी, पता नहीं आज क्या होगा, एकदम मुस्कुराना बंद, बुलाया पाज में, बाप को सन्यासियों की जमीन नहीं चाहिए। अभी सब बातें हो रही, फाइनल हो रही हैं, कागज सब आ गए हैं, डॉक्यूमेंट सारे हमारे पास हैं, और बाबा कह रहा है बाप को सन्यासियों की जमीन नहीं चाहिए, ये आज ही वापस करके आना, ये बता रहा हूं गुप्त बात। तो सब हलचल मच गई कि बाबा इतना फ्री दे रहा है, कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। बाबा कहता है ना सन्यासियों की जमीन नहीं चाहिए, ठीक है बाबा ने कहा है। दूसरे दिन जब उसको वापस किया तो कहने लगा ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो खुले दिल से बड़े दिल से दे रहे हैं, आप प्लीज नहीं वापस करो, वो रिक्वेस्ट करे और हमारे भाई कहे हमको नहीं चाहिए। कुछ दिन के बाद जो सन्यासियों का यहाँ मंदिर है, राम मंदिर, हनुमान जी का रघुनाथ मंदिर, उसके जो हेड्स रहते हैं उन्हीं के अंदर सारी यहाँ के सन्यासियों की गुफाएं हैं, उनको पता चल गया और कई सन्यासियों को, नागा लोगों को उन्होंने बुला लिया कि ये एक सन्यासी ने ब्रह्मा कुमारियों के जमीन क्यों दी है। उनको नहीं पता था ये वापस हो रहे, कागज वापस भी हो गए, वो पता ही नहीं था उनको। अब वो जाकर के वहां पर ले लेकर के लाठी आठी सब बैठ गए जाकर के मंदिर के पास कि देखे कौन कब्जा करने आता है। अब वो सन्यासी कहे हमको तो ब्रह्मा कुमारी को देने, वो बंदूक लेकर के आ गया और हमारे बाबा के बच्चे तो निश्चिंत कि हमको तो चाहिए ही नहीं। इतना हंगामा करने लगे और हम लोग बिल्कुल निश्चिंत, हमको तो चाहिए ही नहीं। अब वो आपस में लड़ रहे हैं, बाबा जानी जान अनहार है, जानता है किसकी लेनी है किसकी नहीं लेनी। फिर एक दिन आया सवेरे सवेरे, जब विदाई लेने लगा तो दादी जी को कान में बोलता है ऐसे ही, इधर जमीन है देखो गांव की तरफ। दूध वाले आते थे सालगांव से दूध लेकर के, वो सवेरे सवेरे ही आकर के, वल्लभ भाई वहां बैठा था, वो दूध वाले आके कहते हैं भाई साहब हमारे पास एक 50-60, 40-50 एकड़ जमीन पड़ी है, आप लेंगे? बाबा उधर इशारा करके गया है और उधर 9 बजे के अंदर वो दूध वाला आ रहा है, सामने से ऑफर कर रहा है कि जमीन पड़ी है वहां पर सालगांव में और आप ले सकते हैं क्या, आपको जरूरत है तो ले सकते हैं। और बाबा उधर बोला था तो दादी ने कहा जाओ जाओ देख के आओ। जब देखने गए तो सबको, बहुत जंगल था, वो भी जंगल ही था, बहुत झाड़ियां थी वहां पर, बहुत अच्छे पेड़ तो अभी भी रखे हैं और बहुत सस्ते दाम पर वो मिल गई। ले तो लिया गया, लिखा पड़ी हो गई 37-38 एकड़ थी। जब ले लिया उसका नक्शा नहीं पास हो, उसके लिए रोड कहीं नहीं, बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि गांव वालों की जमीन खेती के नाम की जमीन थी, उसको ट्रांसफर कैसे करें क्या करें, और यहाँ की गवर्नमेंट एकदम एंटी, नहीं कुछ होने दे। 1 साल के लिए गवर्नमेंट चेंज हो गई, 1 साल के लिए। केवल याद होगा जब बाबरी मस्जिद टूटी ना तो जितने भाजपा शासित राज्य थे सब खत्म हो गए और उसकी जगह पर चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर गवर्नर बन के, गवर्नर तो था ही वो लेकिन उसकी पावर आ गई, चीफ मिनिस्टर की पावर उसके हाथ में आई। और वो बाबा का इतना स्नेही, इतना सहयोगी बच्चा था, यज्ञ स्नेही उसको हम कहते, उसको इतना स्नेह था। तो जब उसको पता चला कि सारी फाइल इनकी वापस गई, इनको पास नहीं हो रही है, तो उसने यहां से नीचे से पूरी फाइल क्लियर करवाई और क्लियर करा के पूरा नक्शा बनवा करके पास करवाया। और बाद में रोड नहीं है तो यहां फाउंडेशन डालने आया और सभा के बीच में बोलता है भाषण करते करते कि गवर्नर हाउस की तरफ से 17 लाख रुपया यहां की रोड के लिए डिक्लेयर किए जाते हैं, न रोड है न नक्शे में है, गवर्नर हाउस की तरफ से दिए जाएंगे 17 लाख रुपया, सभा के बीच में बोल रहा है। अब सारी हलचल बन चुकी इनके पास, जहां पर नक्शा नहीं, रोड नहीं थी, पंखडंडी थी, अब कहीं से भी बनाई, इधर से रोड उधर से बन गई, रोड बन के तैयार हो गई। तो उद्घाटन करने खुद आया और जब नक्शा बिल्कुल तैयार हो गया, सब मकान तैयार होने लगे, सब पास हो गया सब, वो फिर से अपनी सीट पर चीफ मिनिस्टर जो था वो आ गया। 1 साल के लिए सिर्फ परिवर्तन हुआ। कौन करा रहा है सब? बाबा की बहुत गुप्त लीला चल रही है, प्रभु लीला है ये। और ऐसे यज्ञ को वृद्धि करा रहा है गुप्त रीति से, जो देखते चलो कोई भी इसमें पूछने की जरूरत नहीं, क्यों क्या कैसे करने की जरूरत नहीं, उसका खेल चल रहा है, उसका किसका कितना सफल कराना है, किसका पुण्य करना, किसका भाग्य बनवाना, वो जानता है। कई अल्पज्ञ लोग सोच लेते हैं, यहां ऐसे हुआ, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। बाबा कहता तुम अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, शांत रहो, सब बाबा ठीक करेगा। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, बच्चे तुम अपने आप को ठीक कर लो, बाकी सबको बाबा देख लेगा। याद है बाबा ने खास ये बात कही कि तुम अपने आप को ठीक करो, बाकी सबको बाबा देख लेगा। तो हम लोग कभी कभी संकल्प चला लेते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन बाबा अपने यज्ञ को कैसे वृद्धि करा रहा है। जब शांतिवन बना ना, पता कैसे बना, बड़ी विचित्र बात थी। बाबा कहने लगा बाप आएगा कम से कम 10,000 बच्चों को बुलाओ, इकट्ठा करो। कैसे आएगा, कहाँ आएगा? तो एक छोटा सा स्थान शांतिवन का लिया था, पहले झोपड़ी थी वहां और ये बरगद का जो बीच का झाड़ है वो था। हम लोग वहां पर जाके पिकनिक करते थे, एक बुढ़िया को वहां रख दिया था। बुढ़िया माता थी, यहाँ बीमार रहती थी, उसको वहां रखा था, रज्जू माता नाम था उसका, तो उसको वहां रखा था। उसका छोटा सा भंडारा चलता था, वहीं पर हम लोग जाकर के अपना पिकनिक करते थे। बरगद के नीचे कोई स्थान नहीं था, तो जब बाबा ने कहा कि 10-12 हजार बच्चे आए और बाप उनसे मिलेगा, तो सब ने बहुत प्रयास किया और उस जमीन में टेंट लगवाए। टेंट लग गए, बाबा आ गए टेंट के अंदर और बाबा मिलके गए, और इतनी जोर से तूफान आया, आंधी आई, तो सारे टेंट जितनी माताएं जितने भाई रहे थे सबके उड़ गए, कोई नहीं, सबके कपड़े और बिस्तर भीग गए। दादी को बड़े संकल्प चले कि मैंने इनको बुलाया, इतना मेहनत से आए, सब इतना खर्चा किया, इतने टेंट लगवाए, सब उड़ गए। तो बाबा को बताया गया, बाबा कहता बच्चे थोड़ा सा कुछ बना लो। बनाने की छुट्टी नहीं दी थी पहले, क्यों कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, क्वेश्चन तो होते हैं ना। बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, स्टेज की सीट बना लो, ऊपर की स्टेज बना लो, ऊपर छत डाल लो। कितना आज बड़ा शांतिवन बन गया। शुरुआत कहां से हुई, एक टेंट से शुरू हुआ, और टेंट अगर नहीं उड़ते तो शायद हर साल टेंट में ही आते हम सब। थी, आई थी आप भी? हाँ, उस समय टेंट ही था और कुछ था ही नहीं। हम लोग जो सेवा के लिए जाते थे तो एक साबुन फैक्ट्री बनी थी, उसी में सब सो जाते थे जाकर। तो कहने का मतलब है कि यज्ञ स्नेही बाबा के गुप्त बच्चे बाबा के यज्ञ को भरपूर कर रहे हैं, और करण करावनहार बाबा उनको गुप्त प्रेरणा दे करके अपना इतना बड़ा यज्ञ चला रहा है। हम सब अपने तन मन धन समय जो है, अगर पहचान करके कि किसका ये यज्ञ है, इसका यज्ञ पिता कौन है, यज्ञ माता कौन है, और कौन ये किसके लिए यज्ञ रचा है, कहता है सारी दुनिया की आहुति इसमें पड़ने वाली है। जब तक सतयुग नहीं बना है तब तक ये यज्ञ चलता ही रहेगा। तो जब बाबा का प्लान इतना बड़ा है तो उस प्लान के अंदर कहते हैं गिलहरी को भी अकल होता है। गिलहरी को भी अकल था, कौन सा? जब राम ने पुल बांधना शुरू किया तो वो देख रही थी ये सब बंदर क्या कर रहे हैं, पत्थर लाते हैं पानी में डालते हैं वो तैरने लगते हैं। तो उसने कहा ये पत्थर तैरते तैरते कहीं इधर उधर हो जाएंगे, चलो इसके बीच में हम भी कुछ मदद कर दें। तो बेचारी जाके पानी के अंदर डूबती थी और पानी के बाद रेत में आके लेट जाती थी, वो रेती उसके ऊपर चढ़ती थी, फिर पहाड़ पत्थर पर जाके पुल के ऊपर झाड़ा के आती थी। तो ये सब बंदरों ने देखा ये कर क्या रही आखिर, छोटी सी गिलहरी बार बार जाती है पानी में भीगती है, फिर बालू में लेटती है, फिर आके पहाड़ पर पत्थर हिला दे, अपने बाल हिला करके बालू झाड़ देती है। तो उसको पकड़ के राम के पास ले गए। तो राम ने पूछा तुम क्या करती है? बोला मैं भगवान के पुल बांधने में मदद कर रही हूँ। क्या मदद कर रही है? मैं बालू को ले जाती हूँ, झाड़ कर पानी से गीली होकर के आती हूँ। बाबा भगवान को बड़ा प्यार आ गया और कहते ऐसा प्यार किया जो उसके हाथ आशीर्वाद दे दिया, ऐसे चार उंगलियां उसके ऊपर बन गई। गिलहरी के ऊपर चार उंगली है ना, तो कहते भगवान का आशीर्वाद है उसको। तो क्या हमको गिलहरी जितना भी अकल नहीं है क्या? जब भगवान इतनी बड़ी सतयुग की दुनिया बनाने के लिए, इतनी सीताओं को मुक्त कराने के लिए एक पुल बना रहा है कलयुग से सतयुग में जाने का, तो उसमें हम कुछ तो अपनी सहयोग की उंगली लगा दें। इसने किया उसने किया कितना किया क्यों क्वेश्चन में जाते, जिसको जितना करना है करे। ये तो बाबा कहता है मैं 21 जन्म तो क्या 84 जन्मों की गारंटी लेता हूं। जो संगम युग पर बाबा के कार्य में अपना तन मन सफल करेंगे, अपनी संपत्ति लगाएंगे, वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। इसलिए संगम का वेला है, समय को पहचानना है, यज्ञ पिता और यज्ञ माता को बहुत अंदर से पहचान करके उसके कार्य में सहयोगी बनना। ठीक है, सहयोग की अंगुली अगर हमारी लग गई तो गोवर्धन पर्वत तो उठा ही पड़ा है, भगवान तो अकेला भी उठा सकता है, लेकिन कहता है तुम सबकी सेफ्टी उसमें ही है कि तुम सब उंगली लगा करके नीचे आ जाओ। तो जो उंगली हम लगा दें बाबा के कार्य में तो बाबा का यज्ञ संपन्न हो जाए और हमारी सत्यों की दुनिया आ जाए जल्दी से जल्दी। निश्चय है ना, आएगी ना कि नहीं आएगी? आना ही है, कलयुग को जाना ही है और सत्युग को आना ही है, और उसके लिए बीच में जो हमें समय मिला है इसको हमें सफल करना ही है। तो तन मन धन समय श्वास संकल्प संपत्ति जो कुछ है वो बाबा के कार्य में सफल करके सफलता मूरत सफलता भव का वरदान ले लो। ओम शांति।